ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउवा ने कहा, विज्ञान और प्रविधि को देश के आधुनिकीकरण और उत्पादन प्रणाली से जोड़ने की है जरूरत। परसों 8 गते की प्रतिनिधि सभा बैठक से पहले सत्ता गठबंधन की बैठक से एमसीसी का निराकरण होगा, संचार मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्के का कथन। श्रमिकों के लिए अलग अस्पताल बनाने की श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय को मंत्रिपरिषद की बैठक से मिली सैद्धांतिक स्वीकृति। और भारत की एक अदालत ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 लोगों को सुनाई फांसी की सजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री एवं नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्ट के कुलपति शेर बहादुर देउवा ने कहा कि विज्ञान और प्रविधि के क्षेत्र में नए शोध, अध्ययन, अनुसंधान और आविष्कार के लिए सभी को एकीकृत और समन्वयात्मक रूप से प्रयास करने की जरूरत है। आज नास्ट की 45वीं प्राज्ञ सभा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि विज्ञान प्रविधि के क्षेत्र में शिक्षित जनशक्ति को स्वदेश में ही पूर्ण रूप से परिचालित करने से प्रतिभा पलायन की समस्या का समाधान हो सकता है और इससे देश में आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने संबंधित मंत्रालय और नास्ट के पदाधिकारियों से देश के वैज्ञानिकों, अनुसंधान कर्मियों सहित नास्ट से आबद्ध वैज्ञानिकों तथा विज्ञों की विद्वत्ता का पूर्ण उपयोग करने और इनके वृत्ति विकास के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने का निर्देश किया। सरकार श्रमिकों के लिए अलग अस्पताल बनाने की तैयारी में है। कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने कहा कि अस्पताल स्थापना के लिए श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय को सैद्धांतिक स्वीकृति देने का निर्णय बैठक ने किया है। मंत्री कार्की से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिपरिषद बैठक ने कोविड-19 आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिम की पूर्व तैयारी परियोजना के लिए विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2 अरब 14 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकार करने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने ग्लोबल फंड के एड्स, टीवी और मलेरिया बीमारी पर रोकथाम व नियंत्रण कार्यक्रम सन 2021-24 के क्रियान्वयन के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने की अख्तियारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव को देने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद बैठक ने काठमांडू की गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 और चितवन की राप्ती नगरपालिका वार्ड नंबर 6 को बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषित कर बीमारी के नियंत्रण पर काम करने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने राष्ट्रीय बीमा संस्थान संचालक समिति के अध्यक्ष गंगाराम कड़ेल के इस्तीफे को स्वीकृत करने, सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ नेपाल के अध्यक्ष पद पर रमेश कुमार हमाल को नियुक्त करने, नेपाल वन निगम लिमिटेड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर भट्टराई को पद से बर्खास्त करने का भी निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक ने नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति 2078 को स्वीकृत करने, मुल्की फौजदारी कार्यविधि संहिता 2047 की अनुसूची 1 में बदलाव करने, नेपाल मेडिकल काउंसिल 5वां संशोधन नियमावली 2078 को स्वीकृत करने लगायत निर्णय किये। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में आदिवासी जनजाति आयोग का प्रतिवेदन पेश किया गया। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की ओर से कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बडू ने आदिवासी जनजाति आयोग का प्रतिवेदन 2077-78 पेश किया। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के विरोध के बीच ही आयोग का प्रतिवेदन पेश किया गया था। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद प्रमुख प्रतिपक्षी दल के सांसदों ने नारेबाजी की थी। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक फागुन 8 गते रविवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने कहा कि परसों के लिए बुलाई गई सत्ता गठबंधन की बैठक से एमसीसी के बारे में निराकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आज हुई बैठक के बाद प्रवक्ता कार्की ने कहा कि गठबंधन की अगली बैठक फागुन 8 गते रविवार सुबह 10 बजे के लिए बुलाई गई है और उसी बैठक से अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को अंतिम रूप दिया जाएगा। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबै को यो विश्वास होनी नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार
श्रम ऐन 2074 पालना गरौं श्रमिक आपूर्तिकर्ता र रोजगारदाता सजग बनौं
नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
अब बाकी समाचार राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के संदर्भ में आज से देशभर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हुआ है आज से 3 दिनों तक देशभर विभिन्न सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा दिवस के अवसर पर आज से 3 दिनों तक घर घर में दीपावली सरकारी और गैर सरकारी संघ संस्थाओं के कार्यालय परिसर में साफ सफाई और रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा इसी तरह विभिन्न संचार माध्यमों से प्रजातंत्र दिवस संबंधी संदेश सूचना अंतर्क्रिया विचार विमर्श कार्यक्रम प्रकाशित और प्रसारित किए जाएंगे नेकपा माओवादी केंद्र की केंद्रीय कमेटी की बैठक स्थगित हो गई है माओवादी केंद्रीय कार्यालय के सचिव श्रीराम ढकाल के अनुसार केंद्रीय कमेटी की बैठक फागुन 20 गते तक के लिए स्थगित की गई है फागुन 8 और 9 गते के लिए बुलाई गई बैठक विशेष राजनीतिक परिस्थिति के कारण स्थगित की गई ये जानकारी सचिव ढकाल ने दी नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ प्रकाश शरण महत ने कहा कि एमसीसी के विषय में जनता में भ्रम फैलाया गया है नेपाल प्रेस यूनियन चितवन द्वारा भरतपुर विमानस्थल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एमसीसी परियोजना देश के हित में है ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भुसाल ने कहा कि सरकार जल्द ही हाइड्रोजन संबंधी नीति लाएगी विद्युतीय ऊर्जा के उपयोग के साथ हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादित कर विद्युत की मांग और आपूर्ति में संतुलन कायम करने के विषय में अध्ययन करने के लिए गठित समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन सौंपे जाने के दौरान ऊर्जा मंत्री भुसाल ने यह बात कही आज जल तथा ऊर्जा आयोग के सचिव दिनेश कुमार घिमरे ने मंत्री भुसाल को प्रतिवेदन सौंपा था आज देशभर में कोरोना के 437 नए मामले सामने आए हैं जबकि पिछले 24 घंटे में 2454 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं वहीं 2 संक्रमितों की मौत हो गई ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी देशभर के 6 जिलों मोरंग काठमांडू भक्तपुर ललितपुर कास्की और कैलाली में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 500 से अधिक है बहरहाल देशभर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 14435 है अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार सन 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने आज दोषियों को सजा सुनाई है भारत के कोर्ट ने वॉर अगेंस्ट स्टेट और राजद्रोह के मामले में 38 को फांसी की सजा सुनाई है वहीं 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है हाल ही में अदालत ने एक दशक से ज्यादा लंबे समय तक चले ट्रायल के बाद 49 लोगों को दोषी करार दिया था जबकि 28 लोगों को बरी कर दिया था 26 जुलाई 2008 में हुए धमाके में 57 लोगों की मौत हो गई थी वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे न्यायाधीश एआर पटेल ने गुजरात के सबसे बड़े शहर में हुए 21 सिलसिलेवार धमाकों में आरोपी 28 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था अदालत ने जिन लोगों को दोषी करार दिया है उनमें सफदर नागौरी जावेद अहमद और अतीकुर रहमान भी शामिल हैं सफदर नागौरी पर सन 2008 में कई शहरों में हुए एक के बाद एक बम धमाकों का मास्टरमाइंड होने का आरोप था आपको बता दें कि धमाके कथित तौर पर आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन द्वारा किए गए थे 26 जुलाई 2008 को हुए इन धमाकों में 57 लोगों की मौत हुई थी यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने आज यूक्रेन के सांसदों को बताया है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास लगभग 1,49,000 सैनिक एयरमैन और नौसैनिक तैनात किए हैं उन्होंने बताया है कि आने वाले दिनों में कई हजार और सैनिकों को तैनात किए जाने की संभावना है हालांकि समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रजनीकोव ने बताया है कि उनके देश का मानना है कि सैनिकों की तैनाती के बावजूद व्यापक स्तर पर तनाव बढ़ने की संभावनाएं कम है बीते गुरुवार को यूक्रेन की प्रभावशाली संस्था सुरक्षा एवं रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव ने भी इसी तरह के संकेत दिए थे लेकिन उन्होंने रूस की ओर से उकसावे भरी कार्रवाई के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी है बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच बीते कई हफ्तों से तनाव जारी है और पश्चिमी देश इस बात की आशंका जता रहे हैं कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है हालांकि रूस इस तरह की आशंकाओं का खंडन करता रहा है अन्त में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने कहा, विज्ञान और प्रविधि को देश के आधुनिकीकरण और उत्पादन प्रणाली से जोड़ने की है जरूरत। परसों 8 गते की प्रतिनिधि सभा की बैठक से पहले सत्ता गठबंधन की बैठक से एमसीसी का निराकरण होगा। संचार मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की का कथन। श्रमिकों के लिए अलग अस्पताल बनाने की श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय को मंत्रिपरिषद की बैठक से मिली सैद्धांतिक स्वीकृति। और भारत की एक अदालत ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 लोगों को सुनाई फांसी की सजा। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभ रात्रि।